बाइबिल व्याख्यान 5 की मैथ्यूसन स्टोरीलाइन अधिनियम और पॉल 2024 डेव मैथ्यूसन और टेड हिल्डेब्रांट। यह डॉक्टर डेव मैथ्यूसन द्वारा बाइबिल की कहानी पर व्याख्यान संख्या 6 में से 5 है। इस व्याख्यान में वह पॉल के पत्रों का इलाज करेंगे और पॉलिन पत्रों के माध्यम से भूमि, वाचा, मंदिर, उसके लोगों और राजत्व के 5 प्रमुख विषयों का पता लगाएंगे। और अब डॉक्टर डेव मैथ्यूसन, हम उसे देख रहे हैं जिसे मैं बाइबिल की कहानी कहता हूँ, या उस तरह की अंतर्निहित कथा जो उत्पत्ति 1 और 2 में सृष्टि के लिए उनके मूल इरादे की पूर्ति में मानवता और संपूर्ण ब्रह्मांड के साथ ईश्वर के मुक्तिदायक व्यवहार का वर्णन करती है। हमने देखा है 5 परस्पर संबंधित विषयों के संदर्भ में, भगवान के लोगों का विषय, वाचा का विषय, सृजन और भूमि का विषय, मंदिर का विषय और राजत्व का विषय। और हमने देखा कि पुराने नियम में इनका विकास कैसे हुआ। पिछले व्याख्यान में हमने देखा कि यीशु मसीह के व्यक्तित्व में ये विषय कैसे चरमोत्कर्ष पर पहुंचते हैं और पूर्ण होते हैं, विशेष रूप से इस बात पर ध्यान केंद्रित करते हुए कि ये विषय सुसमाचार में कैसे उभरते हैं और मसीह उन्हें कैसे पूर्णता तक लाते हैं। आज हम जो करना चाहते हैं वह गॉस्पेल से परे देखना है और देखना है कि कैसे वे विषय नए नियम के शेष भाग में सामने आते रहते हैं और अपना रास्ता बनाते रहते हैं। प्रकाशित वाक्य 21 और 22 में युगांत शास्त्रीय मोक्ष की दृष्टि में अपने अंतिम चरमोत्कर्ष और पूर्णता को पाते हैं। और फिर से मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि जब हम कहानी के बारे में सोचते हैं और कहानी कैसे पूरी होती है, तो हमें 2 प्रकार के भेद करने की जरूरत होती है। पहला यह है कि ये मसीह में कैसे पूरे होते हैं, कि मसीह इन वादों, कहानी के मुख्य विषयों और तत्वों की पूर्ति की कुंजी है। दूसरा, ये विषय विस्तार से उन लोगों में भी पूरे होते हैं जो मसीह के हैं और जो विश्वास के माध्यम से मसीह में शामिल हो गए हैं। तो सबसे पहले वे मसीह में पूर्ण होते हैं, और दूसरे वे परमेश्वर के उन लोगों में पूर्ण होते हैं जो उसके हैं। दूसरा अंतर जो हमें करने की जरूरत है वह इन वादों और इन विषयों की आरंभिक पूर्ति और पूर्ण पूर्ति के बीच है। हमने कहा कि जिसे विद्वान अक्सर पहले से ही लेकिन अभी तक शुरू नहीं हुई युगांत विद्या और संपूर्ण युगांत विद्या कहते हैं, उसके बीच युगांत शास्त्रीय तनाव भी इन 5 विषयों को प्रभावित करता है। तो शुरू में वे मसीह और उनके अनुयायियों, चर्च के माध्यम से इस तनाव के पहले से ही भाग में उद्घाटन कर लेते हैं, लेकिन भविष्य में जिस समय धर्मशास्त्री ईसा मसीह के दूसरे आगमन को कहते हैं, ये इतिहास के बिल्कुल अंत में है, वह समय जब ईसा मसीह एक बिल्कुल नई रचना का उद्घाटन करते हैं, फिर इन विषयों को उनकी पूर्ण पूर्ति मिलती है, इस तनाव का पहले से ही पक्ष। इसलिए आज हम पहले से ही दोनों पहलुओं को देखना जारी रखेंगे, विशेष रूप से भगवान के लोगों, चर्च पर ध्यान केंद्रित करेंगे और ये 5 विषय कैसे पूरे होते हैं, लेकिन साथ ही रहस्योद्घाटन 21 में युगांतकारी समापन और अंतिम पहलू पर भी समाप्त होंगे। 22 जहां हम देखेंगे कि ये 5 विषय उभर कर सामने आते हैं। फिर प्रेरितों के काम की किताब से शुरू करते हुए, गॉस्पेल से आगे बढ़ते हुए, मैं आपको जो दिखाना चाहता हूँ वह यह है कि यह कहानी प्रेरितों के काम की किताब के माध्यम से जारी रहती है। अधिनियमों के लिए मैं आवश्यक रूप से 5 विषयों को अलग अलग नहीं करने जा रहा हूँ, बल्कि विशेष रूप से अधिनियमों के आरंभिक अध्यायों को बहुत संक्षेप में देखूंगा, बल्कि संपूर्ण अधिनियमों को भी देखूंगा, और बस यह देखूंगा कि यह कहानी कैसे शुरू होती है सृष्टि में, वापस उत्पत्ति 1 और 2 में सृष्टि कथा में, अब अधिनियमों में प्रभाव डालना जारी है। और फिर मैं आपको याद दिला दूं, मैं यह नहीं कहना चाहता कि प्रत्येक नए नियम के लेखक का मुख्य बोझ इन 5 विषयों की व्याख्या करना है, लेकिन कम से कम यह सुझाव देना चाहता हूँ कि वे इस कहानी को मान लें। वे उस कहानी की निरंतरता मानते हैं जो उत्पत्ति में शुरू होती है, नए नियम से होते हुए ईसा मसीह के जीवन तक जाती है और अब नए नियम के बाकी लेखकों के माध्यम से अपना रास्ता बनाती रहती है। तो प्रेरितों के काम की किताब से शुरू करते हुए आरंभ करने का स्थान वह है जिसे मैं वैसे भी शुरू करना चाहता हूँ, वह है प्रेरितों के काम 1 और श्लोक 8 से। यह दिलचस्प है कि श्लोक 6 में यीशु के अनुयायी प्रश्न पूछते हैं, हे प्रभु क्या यह यही है, इस बार तू इसराइल को राज्य कब लौटाएगा? तो स्पष्ट रूप से वे अभी भी उन वादों की अंतिम पूर्ति की उम्मीद कर रहे हैं जिनके साथ पुराने नियम में भविष्यवाणी का पाठ समाप्त होता है। और अब मेरी राय में अधिनियम 1:8 उस प्रश्न का उत्तर है, एक अर्थ में जब यीशु कहते हैं परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम शक्ति प्राप्त करोगे और तुम यरूशलेम में मेरे गवाह होगे, सारे यहूदिया और सामरिया में और प्रियवी की छोर तक। अब मैं इस श्लोक के बारे में जिस बात पर जोर देना चाहता हूँ वह यह है कि यह एक मिशनरी रणनीति से कहीं अधिक है कि कैसे प्रचार किया जाए जो आपके गृह क्षेत्र से शुरू हो और फिर फैल जाए, चाहे यह कितना भी सच क्यों न हो। यह मुख्य रूप से अधिनियम 1:8 के बारे में नहीं है। अधिनियम 1:8 वास्तव में वे सभी वाक्यांश यशायाह की पुस्तक के पाठों से मेल खाते हैं। तो यशायाह का पुनर्स्थापना का वादा, जहां परमेश्वर अपने लोगों अपने राज्य को एक दैविडिक राजा के अधीन एक नई वाचा में एक नई रचना में पुनर्स्थापित करेगा, यशायाह का पुनर्स्थापना का वादा अब अधिनियमों की पुस्तक में पूरा होता हुआ दिखाई दे रहा है। और यह पाठ जो अधिनियम 1:8 में पूरी पुस्तक का परिचय प्रदान करता है, न केवल एक रूपरेखा रूप में बल्कि धर्मशास्त्रीय रूप से, जिसमें बाकी अधिनियम 1 में यशायाह के बारे में बताते हैं पुनर्स्थापन का वादा, कैसे यह पुराने नियम की कहानी जो सृष्टि से शुरू होती है वास्तव में अब चर्च के प्रसार में सुसमाचार के प्रसार में यीशु के अनुयायियों में पूरी हो गई है। इसलिए उदाहरण के लिए आत्मा प्राप्त करने का उल्लेख जब यीशु उनसे कहते हैं आपको पवित्र आत्मा प्राप्त होगी, जो यशाया अध्याय 32 और पद 15 से निकलती है। तथ्य यह है कि जब यीशु कहते हैं तुम्हें मेरा गवाह बनना है, तो साक्षी विषय फिर से यशायाह की पुस्तक से सामने आता है जहां इसराइल को भगवान का गवाह बनना था। यशायाह अध्याय 43 श्लोक 10 में और श्लोक 12 में भी। और तथ्य यह है कि अंततः शिष्यों का यह कार्य पृथ्वी के अंत तक पहुंचना था, इस गवाही को पृथ्वी के अंत तक पहुंचना था, फिर से यशायाह अध्याय 49 और श्लोक 6 को दर्शाता है कि राज्य अंतः फैल जाएगा और यह गवाही अंतः पृथ्वी के छोर तक जाएगी। इसलिए अधिनियम 1:8 शेष अधिनियमों के लिए एक प्रोग्रामेटिक कथन के रूप में पुराने नियम से बहाली के यशायाह के वादे से निकटता से जुड़ा हुआ है। लेकिन इससे भी अधिक सामरिया और यरूशलेम के उल्लेख पर भी ध्यान दें। जब यीशु कहते हैं तुम आरंभ करोगे, तुम यरूशलेम, सारे यहूदिया और सामरिया में मेरे गवाह होगे। अब लेखक ने सामरिया का उल्लेख क्यों किया है? यीशु ने उनसे यरूशलेम से शुरू करने और फिर सामरिया को भी शामिल करने के लिए क्यों कहा? क्योंकि यहाँ जो हो रहा है वह यह है कि अब दक्षिणी राज्य की राजधानी यरूशलेम और अब इसराइल का उत्तरी राज्य सामरिया एकजुट हो रहे हैं और भविष्यवाणी की उम्मीद की पूर्ति में बहाल हो रहे हैं। इसलिए इसराइल को अब अधिनियमों 1:8 में बहाल किया जा रहा है ताकि यशायाह की बहाली के कार्यक्रम की पूर्ति में मोक्ष अब पृथ्वी के छोर तक जा सके बल्कि संपूर्ण को भरने के लिए भगवान के मूल इरादे की पूर्ति में भी हो सके। उत्पत्ति अध्याय 1:2 में पृथ्वी उसकी महिमा और उसकी उपस्थिति और उसके शासन के साथ। तो पहले से ही अध्याय 1 में लेखक इस कहानी के नोट सुनाता है, जो हमने देखा है वह पूरी तरह से सृष्टि तक जाता है और इसे बुनता है नए नियम के माध्यम से और विशेष रूप से भविष्यवाणी साहित्य में उभरता है। अध्याय 2 में हमें प्रेरितों के काम में अपनी कहानी को पुराने नियम की कहानी से जोड़ने के लेखक के इरादे के बारे में अधिक संकेत मिलते हैं। उदाहरण के लिए प्रेरितों के काम में अध्याय 2, जब आप पेंटेकोस्ट के दिन क्या हो रहा था इस आरोप के जवाब में पीटर का भाषण पढ़ते हैं, तो प्रेरितों के काम के शुरुआती अध्याय में जब पवित्र आत्मा परमेश्वर के लोगों में उंडेला जाता है तो वह जवाब में होता है। इसके लिए पीटर के भाषण में अध्याय 2 को कभी कभी पढ़े और ध्यान दें कि कितनी बार डेविड का नाम लिया गया है। ध्यान दें कि कितनी बार स्थिति डेविडिक राजा से जुड़े पाठ से जुड़ी हुई है। तो अब दाऊद के राजा को बहाल कर दिया गया है। डेविड के लिए परमेश्वर का वादा पुराने नियम में 2 शमूएल 7 तक जाता है, जिसके बारे में हमने कहा कि अंतः उत्पत्ति 1 और 2 में सृष्टि के लिए परमेश्वर के इरादे पर वापस जाता है, जो अब चल रहा है। तो बहाली चल रही है, लेकिन हमें अध्याय 2 में परमेश्वर के लोगों, मंदिर की कल्पना, नई वाचा की कल्पना के विषयों के अधिक संकेत मिलते हैं। उदाहरण के लिए मैं हमेशा इस पहेली में रहता था कि अधिनियम अध्याय 1 के अंत में चर्च ने दूसरे को नियुक्त करना क्यों आवश्यक समझा। अध्याय 1 के अंतिम श्लोक में शिष्य, उन्हें यह आवश्यक क्यों लगा? यह लगभग यहाँ आकस्मिक रूप से पेंटेकोस्ट के दिन लोगों में भगवान की आत्मा को उंडेले जाने और पृथ्वी के छोर तक उसके गवाह बनने के चर्च के आदेश की कहानी में सुझाया गया है। आपके पास फिर से चर्च द्वारा एक उत्तराधिकारी, एक शिष्य को चुनने की यह कहानी क्यों है, जो 12वां होगा। यदि आपको याद हो, यहूदा सुसमाचार से पीछे हट गया था और इसलिए अब चर्च 12वें को चुनता है। वे ऐसा क्यों करते हैं? शायद इसलिए फिर से संख्या 12 महत्वपूर्ण है, अर्थात उन्हें 12 शिष्यों या 12 प्रेरितों की आवश्यकता इसलिए थी क्योंकि यह इसराइल की 12 जनजातियों या परमेश्वर के लोगों का प्रतीक था। इसलिए अधिनियमों के अध्याय 1 के अंत में प्रेरित संख्या 12 को चुनकर लेखक फिर से कह रहा है कि भगवान के लोगों को बहाल किया जा रहा है। 12वें को चुनकर और यीशु मसीह के 12 शिष्यों में ईश्वर के नए लोगों की नींव स्थापित करके इसराइल की बहाली चल रही है। तो मुझे लगता है कि यह बताता है कि क्यों ल्यूक को 12वें शिष्य को चुनने की घटना का वर्णन करना आवश्यक लगता है, क्योंकि यह यहाँ भगवान के लोगों की बहाली का संकेत देता है। यहाँ 12 प्रेरितों पर स्थापित भगवान के नए लोग हैं। यह परमेश्वर के लोगों की सच्ची बहाली है, लेकिन प्रेरितों के काम अध्याय 2 में पाए गए अन्य विषयों पर ध्यान दें। पिंतेकुस्त के दिन पवित्र आत्मा का उंडेला जाना, अधिनियम अध्याय 2 में नई वाचा के वादे का सुझाव दिया गया है। यदि आप भविष्य सूचक पाठ पर वापस जाए, यहाँ तक कि यहेजकेल अध्याय 36 और 37 तक, तो नई वाचा को पवित्र आत्मा के उंडेले जाने के साथ और संकेत दिया जाना था। पवित्र आत्मा का उपहार एक संकेत है कि भगवान की नई वाचा उनके लोगों पर आई है। ग्रेग बील ने कुछ लेखों में यह भी तर्क दिया है कि पेंटेकोस्ट के दिन लोगों पर आत्मा का उंडेला जाना ईश्वर की उपस्थिति को उनके मंदिर में निवास और विश्राम करने के लिए आने का संकेत देता है। तो आपके पास प्रेरितों के काम अध्याय 2 में भी मंदिर का विषय है, साथ ही वाचा का विषय भी है और इसराइल की पुनर्स्थापना भी है। दिलचस्प बात यह भी है कि ये सभी व्यक्ति पिंतेकुस्त के दिन की तैयारी के लिए यरूशलेम की तीर्थयात्रा कर रहे हैं और आत्मा का उंडेला जाना संभवतः पुराने नियम की भविष्यवाणी की अपेक्षा को दर्शाता है, जिसे हमने यहेजकेल और यशायाह जैसे ग्रंथों में तीर्थयात्रा के बारे में देखा था। लोग या निर्वासन से लोगों की अपनी मातृभूमि में वापसी और फिर उसके साथ डेविडिक राजा का शासन और आत्मा का उंडेला जाना, नई वाचा, अपने लोगों के साथ भगवान की उपस्थिति, ताकि रिचर्ड बाउकॉम अपनी हाल की पुस्तकों में से एक में दावा कर सके। वह दावा कर सकता है कि पेंटेकोस्ट हो सकता है कि यह चर्च का जन्मदिन उतना न हो जितना प्रवासी भारतीयों की बहाली की शुरुआत हो, अर्थात निर्वासन के कारण बिखरे हुए परमेश्वर के सभी लोग अब पुनर्स्थापित हो गए हैं। तो यहाँ शुरुआत है इसराइल की बहाली का, परमेश्वर के लोगों की बहाली का पहले से ही चरण। कुछ अन्य दिलचस्प टिप्पणियां यह हैं कि संपूर्ण अधिनियमों में आपको इस प्रकार के अद्यतन या नोटिस भी मिलते हैं जो अक्सर कुछ घटनाओं के वर्णन के बाद एक छोटा सा कैप्शन बताते हैं, और चर्च बढ़ता गया और संख्या में वृद्धि हुई या कई शिष्यों को उनकी संख्या में जोड़ा गया। विशेष रूप से उदाहरण के लिए अधिनियमों का अध्याय 6 और श्लोक 1 और 7। श्लोक 1 कहता है, अब उन दिनों के दौरान जब शिष्यों की संख्या बढ़ रही थी, और श्लोक 7, भगवान का वचन फैलता रहा कि संख्या शिष्य बहुत बढ़ गए। और अध्याय 9 भी और श्लोक 31, इस बीच पूरे यहूदिया, गलील और सामरिया में चर्च में शांति थी, और वह प्रभु के भय और पवित्र आत्मा के आराम में रहते हुए मजबूत हुआ, इसकी संख्या में वृद्धि हुई। मुझे लगता है कि वह वाक्यांश बढ़ने और बढ़ने पर जोर उत्पत्ति 1 और 2 में मानवता के लिए भगवान के मूल इरादे का प्रतिबिंब है कि वे फलदायी और बहुगुणित होंगे, कि वे बढ़ेंगे और पृथ्वी को अन्य छवेसर से भर देंगे संतान। संभवतः यह इब्राहिम की संतानों के असंख्य होने, निर्गमन अध्याय 1 में इसराइलियों की संख्या बढ़ने के विषय को भी उठाता है, ताकि एक बार फिर हम यहाँ पा सकें कि भगवान का इरादा अपने लोगों की बहाली के लिए है, जहाँ इब्राहिम का बीज होगा अनगिनत, जहाँ वे उत्पत्ति अध्याय 1 और 2 में सृष्टि में ईश्वर के आदेश को पूरा करने के लिए बढ़ेंगे, फलदायी और बहुगुणित होंगे। अब अधिनियमों की पुस्तक में महसूस किया जा रहा है और पूरा किया जा रहा है। इसलिए अधिनियम अध्याय 28 पॉल की लंबी मिशनरी यात्राओं की एक श्रृंखला के अंत में समाप्त होता है, जो इतना विस्तृत हो जाता है कि पॉल रोम में समाप्त होता है, पॉल की मिशनरी यात्राओं के माध्यम से होता है, और अधिनियम अध्याय 28 सुसमाचार के रोम तक पहुंचने के साथ समाप्त होता है, और आपके पास है पॉल अभी भी परमेश्वर के राज्य का प्रचार कर रहा है। तो अधिनियमों में फिर से क्या हो रहा है? पहले कुछ अध्यायों में भगवान के लोग इसराइल को बहाल किया जा रहा है, मंदिर को अपने लोगों के साथ भगवान के निवास के साथ बहाल किया जा रहा है, एक नई वाचा का एहसास हुआ है, राजा डेविड शासन कर रहा है उसके लोग, और अब जब ऐसा हो गया है तो अधिनियम 1 से 8 की पूर्ति में जिस कहानी को हमने देखा है उसकी पूर्ति में मोक्ष पृथ्वी के छोर तक जा सकता है, ताकि अधिनियम अपने रास्ते पर कहानी के साथ समाप्त हो जाए। प्रेरितों के काम अध्याय 28 में यह एहसास होना कि सुसमाचार एक अर्थ में पृथ्वी के अंतिम छोर तक, रोमन साम्राज्य तक पहुंचता है। तो अब जब यह हो गया है, अब जब इसराइल बहाल हो गया है और कहानी का वह हिस्सा अब एक समाधान तक पहुंचना शुरू हो गया है, अब सुसमाचार का व्यापक समाधान हो सकता है और भगवान का राज्य और शासन पूरी पृथ्वी पर फैल सकता है। जगह भी एक्ट्स में कई अन्य चीजें हैं जिन पर हम शायद गौर कर सकते हैं, लेकिन फिर से मैं आपको बस यह बताना चाहता था कि कैसे एक्ट्स भी कहानी की निरंतरता है। यह आरंभिक चर्च की स्थापना और कैसे आरंभिक चर्च ने सुसमाचार फैलाना शुरू किया उससे कहीं अधिक है। हाँ, यह सच है, लेकिन इसे ल्यूक और अन्य सुसमाचारों में शुरू होने वाले निरंतर चरणों के रूप में देखा जाना चाहिए, जो कि निरंतर चरणों के रूप में देखा जाना चाहिए, उस कहानी की पूर्ति जो सृजन तक जाती है। अधिनियमों में सबसे महत्वपूर्ण व्यक्तियों में से एक प्रेरित पॉल है, इसलिए एक अर्थ में अधिनियम शेष नए नियम का एक उपयुक्त परिचय प्रदान करता है, क्योंकि अधिनियमों में कुछ मुख्य व्यक्ति अब अपने पत्रों और उनके लेखन को बाकी हिस्सों में प्रदर्शित करते हैं। न्यू टेस्टामेंट और एक्ट्स के शुरुआती अध्यायों के बाद से प्रमुख व्यक्तियों में से एक, जो जल्द ही एक तरह से बाकी दृश्य पर हावी हो जाता है, पॉल है। इसलिए मैं पॉल के लेखन को देखना चाहता हूँ और यह प्रदर्शित करना चाहता हूँ कि कैसे विशेष रूप से इस कहानी के ये 5 विषय पॉल में सामने आते हैं। फिर हम मुख्य रूप से पहले से ही उद्घाटन किए गए पहलू को देख रहे हैं। हम मुख्य रूप से यह देखेंगे कि ये विषय चर्च में लोगों में कैसे पूरे होते हैं, लेकिन साथ ही हम यह भी देखना जारी रखेंगे कि पॉल के लिए भी वे स्वयं यीशु मसीह में कैसे पूरे होते हैं। तो आइए परमेश्वर के लोगों के साथ शुरुआत करें। पॉल में ईश्वर के लोगों का विषय स्पष्ट रूप से बहुत दूर के स्थानों में पाया जाएगा जहां वह सिर्फ ईश्वर के लोगों या चर्च या उसके जैसी किसी चीज का उल्लेख करता है। और मेरे मन में पॉल के सभी पत्रों की संख्या है जहां चर्च भगवान के लोग इज़राइल से किए गए वादों में भाग लेते हुए दिखाई देते हैं, विशेष रूप से नई वाचा के वादों में। जैसा कि हम देखने जा रहे हैं, मुक्ति के सभी वादे जिनका आनंद परमेश्वर के लोग लेते हैं, जिनमें ईसाई भाग लेते हैं, वे नई वाचा से अभिन्न रूप से जुड़े हुए हैं। परमेश्वर अपने लोगों के साथ जो नई वाचा बनाता है, उसके बाहर कोई मुक्ति नहीं है। तो यीशु, हमने गॉस्पेल में देखा, एक नई वाचा का उद्घाटन किया। पॉल अब नई वाचा की उपस्थिति और उससे परमेश्वर के लोगों को मिलने वाले मोक्ष के आशीर्वाद को मानना और स्पष्ट करना जारी रखेगा। इसलिए बार बार चर्च को उन वादों में भाग लेते देखा जाता है जो इज़राइल से किए गए थे, विशेष रूप से नई वाचा से जुड़े हुए। मुक्ति के सभी वादे, पवित्र आत्मा के वादे, जब हम पवित्र आत्मा के संदर्भों के बारे में पढ़ते हैं, आत्मा से भरे हुए हैं, आत्मा से सील किए जा रहे हैं, तो पवित्र आत्मा से जुड़ी वह सभी भाषा नई वाचा से संबंधित है। हम एक क्षण में उस पर लौटेंगे, लेकिन ध्यान केंद्रित करने के लिए कुछ अन्य पाठ। सबसे स्पष्ट बातों में से एक इफिसियों अध्याय 2 में पाया जाता है। इफिसियों अध्याय 2 और श्लोक 11 से 22 में विशेष रूप से पॉल यह कहता है, और मैं चाहता हूं कि आप भी इस बात पर ध्यान दें कि इस भाषा का अधिकांश हिस्सा हम निकट ही पढ़ने जा रहे हैं। और दूर शांति का प्रचार करने की भाषा, यह सब यशायाह से निकलती है। तो अब यहां तक कि पॉल भी यशायाह में वादों, पुनर्स्थापना के कार्यक्रम को चर्च में पूरा होते हुए देखता है, जो यहूदियों और अन्य जातियों से बना है। पौलुस कहता है, इसलिए इफिसियों अध्याय 2 के पद 11 से आरंभ करके स्मरण करो कि तुम जो अन्य जातियां जन्म से हो, एक ही समय में जो लोग खतने वाले कहलाते थे, अर्यात यहूदी कहलाते थे, वे शारीरिक खतना कहलाते थे, मानव हाथों से बने मांस। याद रखें कि आप उस समय मसीह के बिना थे, इसराइल के राष्ट्रमंडल से परदेशी थे, वादे की वाचा के लिए अजनबी थे, कोई आशा नहीं थी और दुनिया में भगवान के बिना थे, लेकिन अब मसीह यीशु में आप जो एक बार दूर हैं है यशायाह की ओर से, तुम मसीह के लहू के द्वारा निकट लाए गए हो। इसलिए पॉल के लिए भी मसीह इसराइल से किए गए वादों को पूरा करने की कुंजी है। क्राइस्ट कहानी का चरमोत्कर्ष है, क्योंकि वह हमारी शांति है। उसने अपने शरीर में यहूदी और अन्य जाति दोनों समूहों को एक कर दिया है और विभाजनकारी दीवार को, जो उनके बीच शत्रुता है, ढा दिया है। व्यवस्था को उसकी आज्ञाओं और अध्यादेशों सहित समाप्त करके, ताकि वह स्वयं में एक नई मानवता सृष्टि, यशायाह से आने वाली नई सृष्टि का निर्माण कर सके, ताकि अब वह शांति स्थापित करते हुए इन दोनों के स्थान पर एक नई मानवता का निर्माण करे, और वह क्रूस के माध्यम से यहूदी और अन्य जाति दोनों समूहों को एक शरीर में परमेश्वर के साथ मिला सके, और इस प्रकार क्रूस के माध्यम से शत्रुता को समाप्त कर सके। सो वह आया और तुम्हें जो दूर हैं उन्हें शांति का, और जो निकट हैं उनको भी शांति का संदेश सुनाया, क्योंकि उसके द्वारा हम दोनों को एक आत्मा तक या एक आत्मा में पिता तक पहुंच प्राप्त हुई है। मैं यहीं रुकूंगा, क्योंकि मैं इस पाठ के शेष 2 या 3 छंदों पर बाद में लौटूंगा। लेकिन आप यहां जो देख रहे हैं वह स्पष्ट रूप से पॉल मानता है कि यहूदी और अन्य जातियों को एक नई मानवता में, एक नए निकाय चर्च में एकजुट करना यशायाह को दिए गए भगवान के वादों की पूर्ति या यशायाह के पुनर्स्थापन के वादों की पूर्ति के रूप में देखा जाता है। पॉल के लिए स्पष्ट रूप से अब हम भगवान को अपने लोगों को फिर से स्थापित करने और पुनर्स्थापित करने के अपने इरादे को व्यक्त करते हुए देखते हैं। यहूदियों और अन्य जातियों से युक्त एक नई मानवता। इसलिए जैसा कि हमने सुसमाचार में पहले ही देखा है, मसीह के आगमन के साथ, जो इसराइल और भगवान के लोगों की नियति को पूरा करता है और उनकी कहानी को पूरा करने की कुंजी है, अब भगवान के लोगों में सदस्यता को जातीय रूप से परिभाषित नहीं किया गया है, लेकिन अब को केवल यीशु मसीह के साथ संबंध के संदर्भ में परिभाषित किया गया है। इसलिए क्योंकि यीशु मसीह आ गए हैं और क्रूस पर उनकी मृत्यु के माध्यम से शांति प्राप्त हुई है, अब सदस्यता या भगवान के लोगों से संबंधित होना यीशु मसीह के प्रति किसी की प्रतिक्रिया पर निर्भर करता है। यहूदियों और अन्य जातियों से बनी ईश्वर की प्रजा अब यीशु मसीह में विश्वास के इर्द गिर्द घूमती है। इसलिए इफिसियों के अध्याय 2 में परमेश्वर के नए लोगों को स्पष्ट रूप से बहाल किया जा रहा है। उन्हें अब जातीय आधार पर परिभाषित नहीं किया गया है, बल्कि पूरी तरह से यीशु मसीह और क्रूस पर उनके कार्य के आधार पर परिभाषित किया गया है। एक और कुंजी, ऐसे अन्य ग्रंथ हैं जिनकी ओर हम इशारा कर सकते हैं, लेकिन एक और उदाहरण चर्च को भगवान के लोगों के रूप में समझने की एक और कुंजी पुराने नियम के भगवान के लोगों, पुराने नियम के इसराइल के साथ निरंतरता में भी आवेदन में पाई जाती है। न्यू एक्सोडस थीम या चर्च के मूल भाव का उदाहरण के लिए 1 कुरिन्थियों अध्याय 5 और श्लोक 7 में 1 कुरिन्थियों 10 और 11 का उल्लेख नहीं किया गया है, जहां हम चर्च को इसराइल की तुलना में देखते हैं, लेकिन 1 कुरिन्थियों के अध्याय 5 और श्लोक 7 में मैं पीछे हटूंगा और आइए देखें, मैं 7 पढ़ूंगा। पुराने खमीर को साफ करें ताकि आप एक नया बैच बन सकें, क्योंकि आप वास्तव में अखमीरी हैं। हमारे पासा मेमने मसीह, हमारे फसह मेमने मसीह के लिए बलिदान किया गया है। इसलिए आइए हम पद 8, इसलिए आइए हम पुराने खमीर से नहीं बल्कि द्वेष या बुराई के खमीर से, बल्कि ईमानदारी और सच्चाई की अखमीरी रोटी से त्योहार मनाएं। ध्यान दें कि कितना वह भाषा सीधे निर्गमन कथा से निकलती है। इसलिए एक अर्थ में जो पॉल कह रहा है, एक नया निर्गमन शुरू हो गया है जिसमें यीशु अब अपने लोगों को पाप और मृत्यु और बुराई से बचा रहा है और उन्हें अपने लोगों के रूप में पुनर्स्थापित कर रहा है और उन्हें वैसे ही वितरित किया जैसे उसने निर्गमन के दिनों में अपने लोगों के साथ किया था। आप निर्गमन भाषा को 2 अन्य ग्रंथों कुलुस्सियों अध्याय 1 और श्लोक 13 और 14 में भी पाते हैं। उसने हमें अंधकार की शक्ति से बचाया है और हमें अपने प्रिय पुत्र के राज्य में स्थानांतरित किया है, जिसमें हमें मुक्ति, पापों की क्षमा मिलती है। फिर बचाव और मुक्ति और खरीद की वह भाषा निर्गमन को प्रतिबिंबित करती है। तो भगवान पॉल यहाँ स्पष्ट रूप से एक नए निर्गमन में अपने लोगों को बचाने, अपने लोगों को बहाल करने और निर्गमन मूल भाव की पूर्ति में उन्हें मोक्ष दिलाने के लिए भगवान के इरादे को व्यक्त करता है। गलातियों अध्याय 4 और 1 से 7 भी इस निर्गमन भाषा के साथ गुलामी और पुत्रत्व से मुक्ति और बचाव के संदर्भ में प्रतिध्वनित होते हैं। निर्गमन की पुस्तक से इसराइल भगवान का पुत्र है। तो गलातियों के अध्याय 4 के पहले 7 छंद, मेरा कहना यह है, उत्तराधिकारी जब तक वे नाबालिग हैं गुलामों से बेहतर नहीं हैं, हालांकि वे सारी संपत्ति के मालिक हैं, लेकिन वे पिता द्वारा निर्धारित तिथि तक अभिभावकों और ट्रस्टियों के अधीन रहते हैं। तो हमारे साथ जब हम नाबालिग थे, हम दुनिया की मौलिक आत्माओं के गुलाम थे, परंतु जब समय पूरा हुआ तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा, जो स्त्री से उत्पन्न हुआ और व्यवस्था के अधीन उत्पन्न हुआ, कि व्यवस्था के अधीन लोगों को छुड़ाए और हम बेटों के रूप में गोद ले सकें। और क्योंकि तुम उसकी संतान हो, परमेश्वर ने अपने पुत्र की आत्मा को हे अब्बा, हे पिता कहकर पुकारते हुए तुम्हारे हृदयों में भेजा है। अब तुम गुलाम नहीं हो जैसे निर्गमन के दिनों के लोग थे, परंतु अब तुम पुत्र हो। और यदि पुत्र है तो परमेश्वर के द्वारा वारिस भी, तो स्पष्ट रूप से पॉल निर्गमन की कहानी मान रहा है और निर्गमन भाषा इस पाठ और अन्य ग्रंथों में इंगित करती है कि परमेश्वर एक नए निर्गमन में अब पुनर्स्थापित और बचा रहा है और पुनर्गठन कर रहा है उनके लोग जो अब यह पार सांस्कृतिक समूह है जिसके बारे में हम इफिसियों 2 में पढ़ते हैं। यीशु मसीह के साथ उनके रिश्ते के आधार पर यहूदी और गैर यहूदी दोनों से बने हैं। तो भगवान के लोग पॉल के लेखन में एक महत्वपूर्ण विषय है जहां वह फिर से लोगों को चरमोत्कर्ष के रूप में देखता है, यहूदियों और अन्य जातियों से बना चर्च जो अब प्राप्त करता है और पुराने नियम से भगवान के वादों में भाग लेते हैं, अब हैं ईश्वर के सच्चे लोग ईश्वर के उस इरादे को पूरा करने के लिए जो सृष्टि के आरंभ से ही चला आ रहा है, एक ऐसे लोगों की स्थापना करना जिनके साथ वह एक रिश्ते में प्रवेश करेगा और उसके साथ रहेगा। यह हमें अगले विषय वाचा या नई वाचा के विषय पर लाता है। हमने देखा कि पुराने नियम में भविष्य सूचक ग्रंथ एक नई वाचा की प्रत्याशा के साथ समाप्त हुए जिसे परमेश्वर अपने लोगों के साथ स्थापित करेगा, जिसके बारे में हम यहेजकेल 37, 36 और 7 यिर्मयाह अध्याय 31 जैसे ग्रंथों में पढ़ते हैं। और अब पॉल या तो स्पष्ट रूप से नई वाचा का उल्लेख करता है या महत्वपूर्ण नई वाचा विषयों को भी शामिल और उजागर करता है। इसलिए उदाहरण के लिए जैसा कि मैंने पहले ही कहा है, पवित्र आत्मा का उल्लेख पॉल के सभी पत्रों में जब भी वह पवित्र आत्मा का उल्लेख करता है तो मैं आश्वस्त हो जाता हूँ जिसके अंतर्निहित नई वाचा की स्थापना की धारणा है। पवित्र आत्मा यहेजकेल 36 और 37 में दिए गए वादों में से एक था। पवित्र आत्मा एक नई वाचा का वादा था। जोएल अध्याय 2 की पूर्ति में प्रेरितों के काम 2 में आत्मा का उंडेला जाना स्पष्ट रूप से परमेश्वर द्वारा अपने लोगों के साथ एक नई वाचा की स्थापना से जुड़ा हुआ है। इसलिए वाचा पवित्र आत्मा पर जोर देकर जो हमारे पास है, फिर से पॉल की भाषा कि हम आत्मा से भर गए हैं या आत्मा में बपतिस्मा लिया है या आत्मा के साथ सील कर दिया गया है, इफिसियों 1 या ईसाइयों की अन्य भाषा में साझा करना आत्मा में आत्मा को प्राप्त करना, यह सिर्फ नई ईसाई शब्दावली नहीं है, यह नई वाचा शब्दावली है। तो अपने लोगों के साथ आत्मा की उपस्थिति, लोगों द्वारा पवित्र आत्मा का कब्जा स्पष्ट रूप से पुराने नियम से नई वाचा के विचार को उद्घाटित करता है। जब भी पौलुस पापों की क्षमा की बात करता है तो उसका उल्लेख होता है, क्रूस पर मसीह की मृत्यु के माध्यम से हमें पापों की क्षमा मिलती है। पापों की क्षमा नई वाचा से जुड़ी हुई है। ईजेकील की भाषा में ईश्वर हमें शुद्ध करते हैं या हमें एक नया हृदय देते हैं या हमारी अशुद्धता को दूर करते हैं। यह तथ्य कि हमारे पापों को क्षमा कर दिया गया है नई वाचा के आशीर्वादों में से एक है। इसलिए जब भी पॉल हमारे पापों को शुद्ध करने, दूर करने या माफ करने की बात करता है तो यह नई वाचा के कारण होता है। यह नई वाचा की स्थापना मानता है। उन स्थानों में से एक जहां पॉल स्पष्ट रूप से नई वाचा पर चर्चा करता है और नई वाचा की भाषा पर भरोसा करता है और अधिक सामान्यतः वाचा की भाषा 2 कुरिन्थियों अध्याय 3 में पाई जाती है। 2 कुरिन्थियों अध्याय 3 में, और फिर मैं बस इसके कुछ हिस्सों को पढ़ूंगा, मैं करूंगा पूरी चीज नहीं पढ़े, लेकिन यहाँ सब कुछ वाचा की भाषा पर ध्यान दें, यहेजकेल 36 और 37 की भाषा पर ध्यान दें। तो पॉल कहते हैं, क्या हम स्वयं की सराहना करना शुरू कर रहे हैं? 2 कुरिन्थियों 3। फिर निश्चित रूप से हमें, जैसा कि कुछ लोगों को होता है, आपको या आपसे अनुशंसा पत्रों की आवश्यकता नहीं है, है ना? आप स्वयं हमारे हृदयों पर लिखे गए एक पत्र हैं जिसे सभी लोग जान सकते हैं और पढ़ सकते हैं, और आप दिखाते हैं कि आप हमारे द्वारा तैयार किया गया मसीह का एक पत्र हैं, जो स्याही से नहीं बल्कि जीवित परमेश्वर की आत्मा, नई वाचा की आत्मा, पत्थर की पट्टियों पर नहीं बल्कि मानव हृदय की पट्टियों पर लिखा गया है जो इस भाषा को दर्शाता है। यहेजकेल 36:37। मसीह के द्वारा हमें परमेश्वर के प्रति ऐसा ही विश्वास है। ऐसा नहीं है कि जो कुछ भी हमसे आ रहा है उस पर दावा करने के लिए हम स्वयं सक्षम हैं। हमारी योग्यता ईश्वर की ओर से है, जिसने हमें नई वाचा का अक्षरश नहीं बल्कि आत्मा का सेवक बनने के लिए सक्षम बनाया है। क्योंकि पत्र तो मारता है, परंतु आत्मा, यहेजकेल की नई वाचा की आत्मा, जीवन देती है। इसलिए स्पष्ट रूप से पॉल नई वाचा की भाषा का उपयोग करता है, लेकिन फिर से उसकी भाषा वाचा की भाषा और विशेष रूप से नई वाचा को मानती है, जैसा कि पॉल के मंत्रालय के केंद्र में यिर्मयाह और विशेष रूप से ईजेकील में पाया जाता है। वह पुराने नियम में वादा की गई इस नई वाचा का मंत्री और वितरक है। इसलिए पॉल भगवान के लोगों की बहाली की कल्पना करता है, एक ऐसे लोग जो सांस्कृतिक या राष्ट्रीय बाधाओं को पार करते हुए यीशु मसीह के साथ अपने रिश्ते के आधार पर सभी लोगों को शामिल करते हैं। इसलिए पॉल समझता है कि लोगों की बहाली का वादा जो पुराने नियम की कहानी और अंतः उत्पत्ति की पुस्तक तक जाता है अब चल रहा है। इसके साथ ही वाचा का विषय भी है। यदि लोगों को बहाल कर दिया गया है तो अनुबंध को भी लागू किया जाना चाहिए। और हम फिर से पॉल की भाषा में और नई वाचा की उपस्थिति और उद्घाटन की कई धार्मिक अवधारणाओं में संकेत देखते हैं। डेविडिक साम्राज्य या राजत्व, इसी तरह पॉल मानता है और कभी कभी स्पष्ट रूप से स्पष्ट करता है, अपने उपशासन के माध्यम से सृष्टि पर शासन करने के ईश्वर के इरादे की पूर्ति में डेविडिक राज्य के वादे जो उत्पत्ति पर वापस जाता है। पॉल इसे फिर से यीशु मसीह के व्यक्तित्व में बल्कि उसके लोगों में भी पूरा होने के रूप में देखता है। इसलिए उदाहरण के लिए ऐसे स्थान हैं जहां पॉल स्पष्ट रूप से यीशु को डेविड से किए गए वादों की पूर्ति के रूप में समझता है। रोमियो 1:3 उसके पुत्र के विषय में सुसमाचार जो शरीर के अनुसार दाऊद का वंशज था। तो स्पष्ट रूप से पॉल 2 Samuel 7 की पूर्ति और आने वाले डेविडिक राजा की भविष्यवाणी की उम्मीद में यीशु मसीह को डेविड की भौतिक वंशावली से जोड़ता है। इस बात पर भी कुछ बहस है कि किस हद तक जब भी यीशु को क्राइस्ट कहा जाता है तो कुछ अंग्रेजी अनुवादों में मसीहा हो सकता है, लेकिन हमारे अधिकांश लोग यीशु मसीह या मसीह या उसके जैसा कुछ कहेंगे। यहां तक कि पॉल के पत्रों और नए नियम के अन्य लेखकों में भी जब वे यीशु को मसीह के रूप में संदर्भित करते हैं तो उनमें से कितने उदाहरण सिर्फ यीशु के नाम या उचित नाम के विपरीत शीर्षक हैं। इस बात पर कुछ सहमति है कि कम से कम उनमें से बहुत से जिनके बारे में हमने परंपरागत रूप से सोचा है कि वे यीशु मसीह ही हैं, कि मसीह अभी भी मसीहा के रूप में, राजा के रूप में, डेविड के वादों को पूरा करने के लिए अपनी नाममात्र की शक्ति का कुछ अंश धारण करते हैं। लेकिन कम से कम पॉल स्वयं हमें रोमियो 1:3 में बताता है कि यीशु डेविड का वंशज है। अन्यत्र यहां तक कि जहां पॉल स्पष्ट रूप से यीशु को मसीह या डेविड का पुत्र या ऐसा कुछ नहीं कहता है और उसे डेविडिक वादों से नहीं जोड़ता है, वहां अन्य स्थान भी हैं जहां पॉल स्पष्ट रूप से डेविडिक ग्रंथों को मसीह के व्यक्तित्व पर लागू करता है। इसलिए उदाहरण के लिए इफिसियों 1 में, और मुझे पता है कि मैं पूरी किताब या संदर्भ के बारे में ज्यादा बात किए बिना कई पाठों पर विचार कर रहा हूं। फिर से मेरा उद्देश्य बस आपको यह दिखाना है कि पॉल के अपने विभिन्न चर्चों को दिए गए संदेश की अभिव्यक्ति में ये विषय कितने व्यापक हैं। लेकिन इफिसियों के 1:20-23 में कहा गया है, परमेश्वर ने इस शक्ति को मसीह में तब कार्यान्वित किया जब उसने उसे मृतकों में से उठाया और स्वर्गीय स्थानों में दाहिने हाथ पर बैठाया, सभी शासन और अधिकार और शक्ति और प्रभुत्व से बहुत ऊपर, प्रत्येक नाम जिसका नामकरण किया जाता है, न केवल इस युग में बल्कि आने वाले युग में भी, और उसने सब कुछ उसके पैरों के नीचे कर दिया है और उसे सभी चीजों पर मुखिया बना दिया है, जो चर्च है, जो उसका शरीर है, उसकी पूर्णता जो सब कुछ भर देती है। मैं चाहता हूं कि आप जिस बात पर ध्यान केंद्रित करें वह यीशु की इस भाषा में है कि वह ईश्वर के दाहिने हाथ और सभी चीजों पर उसके प्रभुत्व और उसके पैरों के नीचे उसके सभी शत्रुओं पर आधिपत्य रखता है। यह भाषा भजन 110 और भजन 8 से निकली है। भजन 110, जिसे अक्सर शाही या मसीहाई भजन कहा जाता है, राजा का वर्णन करता है। मसीहाई राजा भगवान के दाहिने हाथ, शक्ति की स्थिति, एक स्थिति जो प्रदान की जाती है वह अधिकार का, और अब यीशु मसीह को उनके स्वर्गीय उत्कर्ष में देखा जाता है। यीशु के डेविडिक शासनकाल, डेविड के सिंहासन पर राजा डेविड के रूप में उनका शासनकाल, अब भजन 110 की पूर्ति में यीशु के भगवान के दाहिने हाथ पर चढ़ने से शुरू हो गया है। लेकिन दिलचस्प बात यह भी है कि भजन 110 से आगे जाने के लिए आपको भजन 8 याद है। शायद हम में से ज्यादातर लोग भजन 110 से भी बेहतर जानते हैं। लेकिन भजन 8 में हम यह पढ़ते हैं, हे भगवान, हमारे सर्वोच्च भगवान, आपका नाम कितना शानदार है सारी पृथ्वी पर। इसकी शुरुआत इसी प्रकार होती है, और तब आप पहचानते हैं, कुछ छंदों को छोड़ दें, जब मैं आपके आकाश, आपकी उंगलियों के काम, चंद्रमा और आपके द्वारा स्थापित सितारों को देखता हूं, तो मनुष्य क्या है कि आप उनके प्रति सचेत रहते हैं। स्पष्ट रूप से उत्पत्ति 1 और 2 रचना को उद्घाटित करता है, या नश्वर की आप उनकी परवाह करते हैं। अब यह सुन, तूने उन्हें परमेश्वर से कुछ ही कम कर दिया और महिमा और आदर का ताज पहनाया, अर्थात मानवता आपकी रचना का चरमोत्कर्ष है। तूने उन्हें अपने हाथों के कामों पर प्रभुता दी है, उत्पत्ति 1। तूने सब कुछ उनके पांवों के नीचे कर दिया है। अब श्लोक 22 में यीशु मसीह को स्वर्ग तक ऊंचा करते हुए देखा गया है। भजन 8 की पूर्ति में परमेश्वर ने सब कुछ यीशु के पैरों के नीचे, अपने पैरों के नीचे रख दिया है। तो क्या हो रहा है? मूल रूप से पॉल कह रहा है, मसीह के पुनरुत्थान और स्वर्ग में उसके उत्थान के साथ भगवान के दाहिने हाथ पर, जहां वह सभी चीजों पर शासन करता है और सभी चीजें उसके पैरों के नीचे हैं। यीशु मसीह अब न केवल डेविडिक शासन में प्रवेश कर चुका है और शासन करें, लेकिन उत्पत्ति 1 और 2 की पूर्ति में एक ऐसा शासन जो मानवता के लिए ईश्वर के मूल इरादे की पूर्ति में सारी सृष्टि पर ईश्वर का शासन फैलाएगा। उत्पत्ति 1 और 2 से वह विश्वव्यापी नियम जो आदम और हव्वा के लिए बनाया गया था, लेकिन वे असफल रहे, और फिर उसे दाऊद के राजा के माध्यम से पूरा किया जाना था। अब यीशु मसीह की मृत्यु और पुनरुत्थान और उनके उत्थान के माध्यम से उद्घाटन किया गया है स्वर्ग। अन्य संकेत भी हैं, न केवल डेविडिक राजत्व मूल भाव के, बल्कि सामान्य रूप से राजत्व मूल भाव के भी, जो सृजन से जुड़े हैं। ईश्वर की छवि की धारणा के बारे में क्या, कि उसने मनुष्य को अपनी छवि में बनाया, ईश्वर को प्रतिबिंबित करने के रूप में, ईश्वर का प्रतिनिधित्व करने के लिए, और संपूर्ण सृष्टि में ईश्वर की महिमा और शासन का प्रतिनिधित्व करने के लिए। बाद में कुछ पुस्तकों में, कुलुस्सियों की पुस्तक में 1 अध्याय में यीशु का वर्णन इस प्रकार किया गया है, वह अदृश्य ईश्वर की छवि है, सारी सृष्टि का ज्येष्ठ पुत्र है। उसके लिए स्वर्ग और पृथ्वी पर सभी चीजें, ध्यान दें कि स्वर्ग और पृथ्वी के मूल स्वरूप दृश्य और अदृश्य बनाए गए थे, चाहे सिंहासन, प्रभुत्व, अधिकार, सभी चीजें उसके लिए और उसके द्वारा बनाई गई थीं। वह आप ही सब वस्तुओं से पहले है और सब वस्तुएं उसी में एक साथ रहती हैं। कुलुस्सियों के इस खंड में संभवतः बहुत सारी चीजें चल रही हैं। शायद यहां एक ज्ञान का उद्देश्य चल रहा है, लेकिन स्पष्ट रूप से उत्पत्ति 1 अध्याय के साथ संभावित संबंधों को पकड़ पाना कठिन है। मानवता को मूल रूप से सभी सृष्टि पर शासन करने के लिए भगवान की छवि में बनाया जाना था, अब यीशु मसीह को सच्ची छवि के रूप में चित्रित किया गया है भगवान, जैसे कि वह स्वयं ही भगवान है। वह अब ईश्वर की सच्ची छवि और प्रतिबिंब और प्रतिनिधि है जो सारी सृष्टि पर शासन करता है, लेकिन इसके निर्माता के रूप में। आदम और हव्वा के विपरीत, जो सृजित व्यवस्था का हिस्सा हैं, अब यीशु मसीह सृष्टि पर शासन करते हैं और इसके निर्माता के रूप में सृष्टि पर संप्रभु हैं। तो यहाँ भगवान की छवि का विषय उभर कर आता है। रोमियो अध्याय 5 और श्लोक 18 और 19 यीशु को आदम और आदम के साथ जोड़ने के लिए उसकी मानवता के लिए ईश्वर का मूल इरादा। अध्याय 5 में और श्लोक 12 से 18 तक शुरू करते हुए मैं पूरा खंड नहीं पढ़ूंगा, लेकिन हमें आदम और मसीह के बीच एक विस्तारित तुलना मिलती है। आदम जो करने में असफल रहा और वास्तव में उसके पाप और सृजन के प्रभाव, अब नए आदम और मानवता और सृष्टि के नए प्रमुख के रूप में यीशु एक अर्थ में ठीक करने और उलटने के लिए आते हैं। तो पद 12, इसलिए जैसे पाप एक मनुष्य आदम के द्वारा जगत में आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई, और इस रीति से सब पाप के कारण मृत्यु सब में फैल गई। संसार में व्यवस्था के पहले से पाप सचमुच था, परंतु जहां व्यवस्था नहीं वहां पाप गिना ही नहीं जाता। फिर भी मृत्यु ने आदम से मूसा तक प्रभुत्व स्थापित किया, यहां तक कि उन लोगों पर भी जिनके पाप आदम के अपराध के समान नहीं थे, जो आने वाले यीशु मसीह का एक प्रकार है। और फिर बाकी भाग में आदम के एक पाप के प्रभाव की तुलना यीशु के धार्मिकता के कार्य के प्रभाव से की जाती है, शायद क्रूस पर उसकी मृत्यु के साथ, ताकि यीशु को स्पष्ट रूप से एक नए आदम के रूप में देखा जा सके, मानवता के लिए भगवान के इरादे को पूरा करने के रूप में जो आदम करने में विफल रहा, अब क्रूस पर यीशु मसीह की मृत्यु के माध्यम से किया जाता है, और नई मानवता और धार्मिकता जिसे वह सब पर स्थापित करेगा चीजें। रोमियो अध्याय 5 के उस वर्णन पर भी ध्यान दें, यहाँ तक कि मसीह जो करता है उसके वर्णन में भी वहाँ कुछ बार आपके पास प्रभुत्व या शासन का विषय है। तो पद 17, यदि एक व्यक्ति के अपराध के कारण मृत्यु ने एक व्यक्ति के माध्यम से प्रभुत्व स्थापित किया, तो निश्चित रूप से वे लोग जो अनुग्रह की प्रचुरता और धार्मिकता का मुफ्त उपहार प्राप्त करते हैं, एक व्यक्ति यीशु मसीह के माध्यम से जीवन में प्रभुत्व स्थापित करेंगे। तो मसीह और आदम के बीच तुलना के कई पहलू हैं जो स्पष्ट रूप से आपको उत्पत्ति अध्याय 1 और 2 पर वापस ले जाते हैं। यीशु मसीह अब सच्चा आदम है, कुलुस्सियों से भी पाठ लाने के लिए, जो अब भगवान की छवि में है, ईश्वर के शासन और ईश्वर की महिमा को पुनर्स्थापित करता है, और अब अपने लोगों को एक नई रचना में, एक नई मानवता में पुनर्स्थापित करता है, जो आदम ने किया था उसे उलटकर मानवता के लिए ईश्वर के इरादे को पूरा करता है, जिसमें एडम विफल रहा। लेकिन इसका एहसास न केवल मसीह में होता है, बल्कि इसका एहसास परमेश्वर के लोगों में भी होता है। इसलिए उदाहरण के लिए उसी पुस्तक कुलुस्सियों में परमेश्वर की छवि के रूप में यीशु के उल्लेख के बाद दिलचस्प ढंग से बाद में कुलुस्सियों अध्याय 3 और श्लोक 10 में पॉल ने इसका वर्णन किया है, और आपने अपने आप को नए स्व के साथ ढाल लिया है, वस्तुतः नया मनुष्य या नई मानवता जो मूल मानवता का स्थान लेती है, एडम के पास वापस जाती है। आपने अपने आप को नए स्वरूप में ढाल लिया है, जो अपने निर्माता की छवि के अनुसार ज्ञान में नवीनीकृत हो रहा है, जो स्पष्ट रूप से उत्पत्ति अध्याय 1 और 2 को उद्घाटित करता है। इसलिए मुझे लगता है कि जो आंशिक रूप से हो रहा है वह मसीह से संबंधित होने के कारण है। भगवान की सच्ची छवि, अब भगवान के लोग भी भगवान की छवि में नवीनीकृत हो रहे हैं, मानवता के लिए भगवान के मूल इरादे को बहाल कर रहे हैं कि भगवान की छवि के वाहक पृथ्वी को उनकी महिमा से भर देंगे और उनके नियमों के साथ पूरी सृष्टि में भगवान के शासन का प्रतिनिधित्व करेंगे। यह अब पूरा होना शुरू हो गया है, क्योंकि भगवान के लोगों ने पुराने स्व को त्याग दिया है और नए स्व को धारण कर लिया है, जो वे मसीह में हैं, यह नई मानवता है जो अपने निर्माता उत्पत्ति 1 और 2 की छवि में नवीनीकृत हो रही है। इफिसियों में 2 राजत विषय से संबंधित एक अन्य पाठ इफिसियों 2 में लेखक यह भी स्पष्ट करता है कि अध्याय 1 के बाद वह पाठ जिसे हमने अभी देखा, जहां यीशु मसीह को उठाया गया है और भगवान के दाहिने हाथ पर बैठाया गया है और सभी चीजों पर प्रभुत्व रखता है। अब ध्यान दें कि पॉल इफिसियों के अध्याय 2 में क्या कहता है। यदि मैं छंद 5 और 6 तक जा सकता हूं, यहां तक कि जब आप अपने अपराधों और पापों में मर गए थे, तब भी उसने हमें मसीह के साथ जीवित किया। परमेश्वर ने हमें मसीह के साथ मिलकर जीवित बनाया। कृपा से आप बच गए। उसने हमें अपने साथ उठाया और स्वर्गीय स्थानों में अपने साथ बिठाया। पॉल जो कह रहा है वह मूल रूप से अध्याय 1 में मसीह के साथ हुआ है। सृजन के इरादे को पूरा करने में उसके उत्कर्ष के कारण सभी चीजों को उसके पैरों के नीचे और भगवान के दाहिने हाथ में, एक बुराई के लिए भगवान के इरादे को पूरा करना, उत्पत्ति 1 और 2 की पूर्ति में सारी सृष्टि पर शासन करने के लिए, अब भगवान के लोग इसमें भाग लेते हैं। मसीह में होने के आधार पर जो स्वर्ग में ऊंचा है और जो सभी चीजों पर शासन करता है, ईसाई भी ईश्वर के लोगों के लिए ईश्वर की छवि को प्रतिबिंबित करने और सभी सृष्टि पर शासन करने के लिए सृजन के मूल आदेश को पूरा करना शुरू करते हैं। इसलिए पॉल स्पष्ट रूप से डेविडिक राज्य के बारे में जानता है। यीशु एक उपशासक के डेविड के वादों की पूर्ति के रूप में इसराइल पर शासन करता है और अंतः सृष्टि पर शासन करता है, लेकिन पॉल भी सृष्टि में वापस जाता है और मसीह और दोनों को देखता है। उसके लोग अंतः पूरी सृष्टि पर अपने लोगों को वश में करने और उन पर प्रभुत्व स्थापित करने के ईश्वर के इरादे को पूरा कर रहे हैं, और वे ऐसा उपशासन करता यीशु मसीह दाऊद के पुत्र और उसके साथ एकजुट होकर मसीह में सम्मिलित होकर करते हैं। चौथा विषय भगवान का मंदिर में निवास। पॉल ने भगवान के मंदिर के जीर्णोद्धार और पुनर्निर्माण के पुराने नियम के विषय को भी उस स्थान के रूप में चित्रित किया है जहां भगवान अपने लोगों के साथ रहते हैं। हालांकि चेतावनी यह है कि पॉल इसे किसी पत्थर की संरचना या किसी अन्य प्रकार की संरचना के भौतिक निर्माण में साकार नहीं देखता है। इसके बजाय पॉल में लगातार मंदिर की भाषा स्वयं लोगों पर लागू होती है। लोग स्वयं इस मंदिर का निर्माण करते हैं जहां भगवान अपनी पवित्र आत्मा, अपनी नई वाचा की आत्मा के माध्यम से अब निवास करते हैं। उसकी उपस्थिति परमेश्वर के लोगों पर टिकी रहती है। शायद हमें इस तरह की भाषा को इसी तरह समझना चाहिए। इफिसियों अध्याय 5 में पॉल श्लोक 18 में कहता है, एक पाठ जिसके बारे में हम में से अधिकांश लोग जानते हैं, पॉल कहता है, शराब से मतवाले मत बनो क्योंकि वह व्यभिचार है, लेकिन आत्मा से भर जाओ। शायद हमें इसे मंदिर में भगवान की उपस्थिति के संदर्भ में समझना होगा। यहाँ की भाषा पुराने नियम की उस धारणा से मिलती जुलती है जिसमें भगवान की आत्मा के माध्यम से उसके मंदिर को भरने के लिए उसकी उपस्थिति की बात कही गई है। अब भगवान के लोगों को एक मंदिर के रूप में देखा जाता है जिसे भगवान की उपस्थिति भर देती है। इसलिए उन्हें इफिसियों 5 के इस खंड के बाकी हिस्सों में दिए गए आदेशों के अनुसार उचित रूप से रहना होगा। लेकिन यह सुझाव देने के लिए कि हमें इसे इसी तरह पढ़ना चाहिए, अध्याय 2 पर वापस जाएं। इससे पहले हमने अंतिम कुछ छंदों को काट दिया था, लेकिन मैं उन पर वापस लौटना चाहता हूँ। इफिसियों अध्याय 2 के श्लोक 19 से 22 तक शुरू करते हुए, तो फिर हे अन्य जातियों, तुम अब परदेशी और परदेशी नहीं रहे, परंतु पवित्र लोगों के साथ नागरिक और इसराइल के साथ परमेश्वर के घर के सदस्य हो। तो अब भवन घरेलू कल्पना पर ध्यान दें जिसे पॉल लोगों पर लागू करता है। लेकिन ध्यान दें कि वह कैसे मंदिर की कल्पना में सूक्ष्मता से बदलाव और विलय करने जा रहा है। प्रेरितों और भविष्यवक्ताओं की नींव पर निर्मित फिर से यह नींव है। 12 प्रेरित ईश्वर के सच्चे लोगों की नींव, जिसकी आधारशिला स्वयं यीशु हैं। उसमें मसीह पूरी संरचना एक साथ जुड़ जाती है और प्रभु में एक पवित्र मंदिर में विकसित हो जाती है, जिसमें इस मंदिर में आप भी हैं, या जिसमें मुझे खेद है, मसीह में आप। यह मंदिर लोग आध्यात्मिक रूप से ईश्वर के निवास स्थान या ईश्वर के लिए एक साथ निर्मित होते हैं। मुझे लगता है कि इसकी बेहतर व्याख्या की गई है। तुम्हें एक ऐसे निवास स्थान में एक साथ बनाया जा रहा है जहां परमेश्वर अपनी आत्मा के द्वारा रहता है। तो स्पष्ट रूप से पॉल चर्च को भगवान के मंदिर के रूप में देखता है, यहेजकेल और अन्य पुराने नियम के ग्रंथों की पूर्ति में मंदिर। हाँ, मंदिर का जीर्णोद्धार कर दिया गया है, इसराइल को बहाल कर दिया गया है, एक डेविडिक राजा एक नई वाचा के रिश्ते में उन पर शासन कर रहा है, और अब परमेश्वर का मंदिर भी परमेश्वर के द्वारा अपने लोगों के बीच में वास करके पुनः स्थापित किया गया है। 1 कुरिन्थियों 3:16 दूसरा क्लासिक पाठ है जहां पॉल कुरिन्थियों से कहता है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर की आत्मा तुम में वास करती है। वही अवधारणा जिसके बारे में हमने इफिसियों के अध्याय 2 में पढ़ा था, यह श्लोक 12 में भी प्रतिबिंबित हो सकता है। अब यदि कोई सोने चांदी और कीमती पत्थरों की नींव में निर्माण करता है, जो मंदिर के जीर्णोद्धार का संकेत है पुराने नियम से, इसलिए स्पष्ट रूप से पॉल ने परमेश्वर के लोगों की कल्पना पुनर्निर्मित और पुनर्निर्मित मंदिर के रूप में की, वह स्थान जहां परमेश्वर अब अपने लोगों के साथ निवास करता है। लेकिन अब मंदिर को बनाने वाले भवन खंड और पत्थर अब ग्रेनाइट या किसी अन्य चीज से नहीं बने हैं, बल्कि अब उनमें स्वयं लोग शामिल हैं। लोग ही सच्चे मंदिर हैं जहां भगवान अब निवास करते हैं। यह व्यक्त कर सकता है कि शेष 1 कुरिन्थियों में पॉल लोगों की पवित्रता के लिए इतना उत्सुक क्यों है, क्योंकि वे मंदिर हैं। इसलिए पॉल ने पवित्रता की अवधारणा और भाषा को पुराने नियम से लिया और अब इसे अधिक व्यापक रूप से स्वयं लोगों चर्च पर लागू करता है, क्योंकि यह अब सच्चा मंदिर है। अंतिम विषय सृजन और भूमि है। मैं सुझाव दूंगा कि यह भाषा या भूमि और सृजन का विषय, जिसमें नई रचना भी शामिल है। याद रखें कि हमने कहा था कि कम से कम यशायाह का अनुमान है कि भूमि पर इसराइल की अंतिम बहाली एक नई रचना के संदर्भ में होगी, कुछ ऐसा जो इसराइल की वापसी से आगे निकल जाता है वादा किए गए देश के लिए। लेकिन हम ऐसी बहुत सी भाषा देखते हैं जो भूमि की याद दिलाती है, इसलिए मुझे लगता है कि फिर से पॉल देखता है। अंततः पॉल एक भूमि और सृजन के वादे को शुरू में मुक्ति के आशीर्वाद में पूरा होता देखता है, जो अब भगवान अपने लोगों के लिए प्रदान करता है। हमने गॉस्पेल में देखा कि भूमि को राज्य में प्रवेश के संदर्भ में देखा जा सकता है। यह दिलचस्प है कि यीशु स्वयं परमेश्वर के राज्य को विरासत में पाने की बात करते हैं। विरासत एक शब्द था जिसका इस्तेमाल इसराइल के पुराने नियम में भूमि को विरासत में देने के लिए किया जाता था। अब यीशु ने उन्हें परमेश्वर का राज्य विरासत में मिलने की कल्पना की। वह विरासत भाषा पॉल में भी सीखी जाती है। इसलिए उदाहरण के लिए आपको एक उदाहरण देने के लिए गलातियों के अध्याय 3:29 में वह कहता है, यदि तुम मसीह के हो तो प्रतिज्ञा के अनुसार इब्राहीम की संतान और वारिस हो। एक वारिस की उस भाषा पर गौर करें। और फिर अध्याय 4:1, मेरा कहना यह है, वारिस, जब तक वे नाबालिग हैं, वे गुलामों से बेहतर नहीं हैं। लेकिन पॉल की बात यह है कि अब वे गुलाम नहीं हैं। इसलिए क्योंकि वे मसीह में हैं, वे प्रतिज्ञा के अनुसार वारिस हैं। दिलचस्प बात यह है कि गलातियों के अध्याय 3:29 में विरासत की भाषा इब्राहीम से किए गए वादे से जुड़ी हुई है। यहां 3:29 में आप इब्राहीम की संतान हैं। इब्राहिम की संतान से क्या वादा किया गया था? उन्हें जमीन देने का वादा किया गया था। परमेश्वर उन्हें सदैव के लिए भूमि देगा। उन्हें जमीन विरासत में मिलेगी। अब परमेश्वर के लोगों को मोक्ष की प्रतिज्ञा गलातियों में पवित्र आत्मा विरासत में मिलने के रूप में देखा जाता है। इसलिए मैं यह मानता हूं कि राज्य की विरासत प्राप्त करना, मोक्ष का आशीर्वाद प्राप्त करना उस भूमि की प्रारंभिक पूर्ति के रूप में देखा जाता है जिसका वादा इसराइल से किया गया था। हालांकि फिर से हम यह देखने जा रहे हैं कि नए नियम में भूमि और सृष्टि के विषय के बारे में केवल इतना ही नहीं कहा गया है। गलातियों अध्याय 5:22-23 में, जिसे मैं पूरी तरह से पढ़ना नहीं चाहता, लेकिन यह 22 से 25 तक वास्तव में आत्मा पाठ का फल है। लेकिन सबसे अधिक संभावना है जब पॉल कहते हैं आत्मा के फल ये चीजें हैं। फिर से मुझे आश्चर्य होता है कि क्या फलने फूलने की भाषा का मतलब नई सृष्टि के फल को इंगित करना नहीं है। उत्पत्ति 1:2 में फलप्रदता का यह विषय भविष्यवक्ताओं में फिर से उभरता है जब परमेश्वर के लोग नई सृष्टि में पुनर्स्थापित होते हैं। आप पाते हैं कि फलदायिता की यह सारी भाषा सामने आ रही है। मजाक नहीं, लेकिन शायद यहां पॉल के विचार के पीछे यही छिपा है। जब वह ईसाइयों के बारे में बात करता है जो आत्मा का फल पैदा कर रहे हैं, तो वे नई सृष्टि का फल पैदा कर रहे हैं। इसराइल की भूमि की बहाली में भूमि और नई रचना का वादा अब नई रचना का फल देने वाले ईश्वर के लोगों में पूरा हो गया है, जो प्रेम, आनंद, शांति, धैर्य, दया, उदारता, विश्वासयोग्यता, नम्रता, आत्म जैसी चीजों का अनुसरण कर रहे हैं, नियंत्रण और कई अन्य चीजें भी। हालांकि ध्यान दें कि पॉल कितनी बार विशेष रूप से नई रचना पाठ का उल्लेख करता है। 2 कुरिन्थियों 5:17 5:17 में पॉल कहता है, इसलिए यदि कोई मसीह में है तो एक नई रचना है। देखो सब कुछ बीत गया है और देखो सब कुछ नया हो गया है। वह भाषा यशायाह अध्याय 65 से निकलती है। और यशायाह में कुछ अन्य स्थान भी हैं जो एक नई रचना की आशा करते हैं। तो फिर से पॉल जो कह रहा है वह यह है कि यदि कोई मसीह में है तो एक नई रचना है। जोर इतना नहीं है कि आपको नए सिरे से बनाया गया है और आपके पास एक नया दिल है और आप जो हैं उसकी तुलना में आप एक नए इंसान हैं। लेकिन मुझे आश्चर्य है कि क्या हमें इसे व्यक्तिगत रूप से इतना नहीं समझना चाहिए जो इसका हिस्सा है, लेकिन नई रचना की पूर्ति के संदर्भ में अधिक व्यापक है। मसीह में नई सृष्टि आ गई है। मसीह में रहकर हम इस नई रचना में भाग लेते हैं। तो यशायाह की नई रचना जो उत्पत्ति 1:2 में भूमि और सृष्टि के लिए भगवान के इरादे की अंतिम पूर्ति है, अब आ गई है और यीशु मसीह के व्यक्तित्व में इसका उद्घाटन किया गया है। सृजन की भाषा को संभवतः उस पाठ के पीछे छिपा हुआ समझा जा सकता है जिससे हम में से अधिकांश लोग इफिसियों के अध्याय 2 से परिचित हैं। जब पॉल कहता है, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह से तुम्हें बचाया गया है और यह तुम्हारा अपना काम नहीं है, यह परमेश्वर का उपहार है, कर्मों का फल नहीं, जिस पर कोई घमंड न कर सके, इफिसियों 2:8-9। अब 10 को देखें, क्योंकि हम उसकी बनाई हुई वस्तुएं हैं या जो कुछ उसने बनाया और अच्छे कामों के लिए मसीह यीशु में उत्पन्न किया है। सृजन भाषा पर फिर से ध्यान दें। इसलिए मुझे लगता है कि पॉल फिर से कह रहा है कि एक नई रचना का वादा अब भगवान के लोगों में पूरा हो गया है जो एक नई रचना है और नई रचना के फल पैदा करने में सक्षम है। और मुझे लगता है कि अगर हम अधिक स्पष्टता से खोज करें तो पॉल स्पष्ट रूप से नई रचना को यीशु मसीह के पुनरुत्थान से जोड़ता है। तो नई सृष्टि का उद्घाटन हो गया। सृष्टि की पूर्ति के लिए इसराइल को दी गई भूमि का वादा अब मुक्ति के वादे में पूरा हो गया है जो हमें विरासत में मिला है, और नई सृष्टि का उद्घाटन अब यीशु मसीह के व्यक्तित्व में हुआ है। अब इनमें से अधिकांश, वस्तुतः ये सभी जिन पर हमने गौर किया है, युगांत विज्ञान के साकार पहलू या कहानी के साकार पहलू पर ध्यान केंद्रित किया है, लेकिन अवास्तविक पहलुओं या अभी तक नहीं पूर्णता पूर्ण युगांत शास्त्र के कई संकेत हैं। मुझे निष्कर्ष में उनमें से एक पर बात करने दीजिए। इफिसियों के अध्याय एक श्लोक दस में, इफिसियों अध्याय एक और पद दस, और मैं वापस आकर श्लोक नौ भी पढ़ूंगा। उसने अपनी इच्छा का रहस्य हमें अपनी उस अच्छी इच्छा के अनुसार बताया है जो उसने मसीह में व्यक्त की थी, और यहाँ वह रहस्य है जो उसने प्रकट किया है, यह परमेश्वर की इच्छा है। समय की परिपूर्णता के लिए एक योजना के रूप में मसीह की सभी चीजों, स्वर्ग की चीजों और पृथ्वी की चीजों को संक्षेप में प्रस्तुत करना या एकत्र करना। फिर स्वर्ग और पृथ्वी सृष्टि की भाषा को प्रतिबिंबित करते हैं। तो वह अध्याय एक और श्लोक दस पॉल द्वारा ईश्वर के अंतिम उद्देश्य की अभिव्यक्ति है जिसकी ओर इफिसियों के बाकी लोग इशारा कर रहे हैं। वह यह है कि एक दिन पूरे ब्रह्मांड में, स्वर्ग और पृथ्वी में सभी चीजें अपना अधिकार पा लेंगी मसीह के अधीन स्थान। उत्पत्ति एक और दो में सृष्टि के लिए सभी चीजों को ईश्वर के मूल इरादे में समेट दिया जाएगा और बहाल कर दिया जाएगा। लेकिन जैसा कि पॉल प्रदर्शित करता है, उस उद्देश्य का उद्घाटन पहले ही हो चुका है। ईश्वर में यहूदी और अन्य जातियों को एक नई मानवता में मिलाना, मसीह में अपने डेविडिक शासन में प्रवेश करना और सृष्टि में सभी चीजों को अपने अधीन करना, और परमेश्वर के लोग मसीह के होने के कारण उस नियम में हिस्सा लेते हैं, और नई वाचा की नींव में परमेश्वर के लोगों की बहाली। भगवान अपने लोगों के साथ रहते हैं और भगवान नई सृष्टि की स्थापना करते हैं। ईश्वर का अंतिम इरादा जो मसीह में संक्षेपित सभी चीजों के लिए उनकी इच्छा की प्राप्ति में पूरा होगा, और उत्पत्ति एक और दो की पूर्ति में मसीह के साथ उनका उचित संबंध ढूंढना अब पहले से ही मसीह के व्यक्तित्व और उन लोगों में चल रहा है जो मसीह के हैं विश्वास के माध्यम से। अगले भाग में हम इस पर ध्यान केंद्रित करेंगे कि ये पांच विषय कैसे